आप सबको राजू भाई जी का परिचय बताना चाहेंगे। आपका परिचय बीके राजेंद्र प्रसाद नाम है, शायद कम लोग जानते होंगे, ज्यादा तो मुरली वाले राजू भाई जी के नाम से जानते हैं। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश कानपुर के पास एक छोटे से गांव के आध्यात्मिक परिवार में हुआ। सन 1960 से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की गतिविधियों आपके ही लौकिक घर से शुरू हुई। बचपन से ही योगी जीवन जीने का संकल्प लिया। आप 1972 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित रूप से विभिन्न डिपार्टमेंट में अथक सेवाएं देते रहे हैं। आप 1976 से दीदी मनमोहनी जी के साथ हिंदी मुरली को कंपोज करने की ईश्वरी विद्यार्थियों के पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए वाणी का सार वरदान स्लोगन के रूप में विशेष पॉइंट्स के द्वारा सर्व ब्राह्मण परिवार को विशेष सेवाएं दे रहे हैं। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की ग्राम विकास प्रभाग का आप हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। आप अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख मुरली श्रवण के साथ टाइप करके विश्व के कोने कोने तक तत्काल सारे विश्व में पहुंचाने का आपका विशेष योगदान है। आप मुख्यालय के पांडव भवन ज्ञान सरोवर शांति वन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट को संभालते हैं। दादी जानकी जी के द्वारा मुख्यालय से प्रति मास स्व उन्नति के लिए पत्र पुष्प निकलता है, जिसमें विशेष अव्यक्त इशारे, परमात्म प्रेरणाएं, दादी जी की प्रेरणाएं अथवा देश विदेश में चल रही ईश्वरीय सेवाओं का समाचार वे आप प्रकाशित करते हैं। इन सब सेवाओं के साथ साथ मुख्यालय से दादी जी की तरफ से पत्र व्यवहार करने का कार्य भी आप देखते हैं। विश्व के चहु दिशाओं में भ्रमण करते हुए आप यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशस जैसे अनेक देशों में वैश्विक स्तर के महासम्मेलनों में संबोधित किया। टेलीविजन इंटरव्यू देकर विभिन्न देशों की आध्यात्मिक सेवाओं को गति प्रदान की। आपको परमात्मा पिता द्वारा अव्यक्त रूप में विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। आपने ईश्वरीय महावाक्यों को संग्रहित कर समय प्रति समय अनेक पुस्तकें जैसे ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त मुरलियों का सार जैसी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ज्ञान अध्ययन के कारण आपकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान का खजाना भरपूर है। आपने योग की गहन अनुभूति की है। अपने क्लासेज प्रवचनों द्वारा आप अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। आप वैश्विक स्तर के महासम्मेलन, सेमिनार, कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न अभियानों का कुशल संचालन कर रहे हैं। शाश्वत यौगिक खेती योजना, ग्राम दत्तक योजनाओं जैसी सेवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसे बाबा के बहुत अमूल्य रत्न विशेष आप सबकी भट्टी में क्लास कराने के लिए आए हैं। तो पुनः आपका हम इस सभा में स्वागत करते हैं राजू भाई जी।
ओम शांति। बाबा के घर में मधुबन की इस तपस्या भूमि में आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबा ने इस तपोभूमि में पिछले 44 वर्षों से रहने का सौभाग्य दिया। सेवाएं तो निमित्त मात्र होती हैं और सदा यही लक्ष्य रहता है जो सेवा मिले हाँ जी करके अपना भाग्य बना लो। बहुत छोटी उम्र में मैं समर्पित हो गया था, 15-16 साल की उम्र में ही, और बाबा के घर में ही सब कुछ सीखा। जो भी योग्यताएं आई हैं वो सब प्रभु देन है। इसलिए बायोडेटा पढ़ने लगती हैं बहनें तो ऐसे लगता है कि बाबा करण करावन हार बच्चों से कुछ भी और किसी भी बच्चे से करा सकता है। आज का विषय जो आपने सुना है, हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन का श्वास क्या है, मुरली। अगर मुरली न मिल रही, कुछ समय लेट हो जाती है तो कितने फोन आ जाते हैं, कितने मेल आते हैं कि आज की मुरली मुझे नहीं मिली, ये मिस हो गई, ये पोस्ट गुम हो गई, अभी अभी भेज दो। मुरली ब्राह्मणों के लिए जीवदान है और हर एक बाबा के बच्चे का प्यार मुरली से है, क्योंकि मुरली ने ही हमारी जीवन बनाई है। सभी बाबा की मुरली प्यार से सुनते हैं ना, सुनते हैं सभी, रोज सुनते हैं कि कभी कभी सुनते हैं, रोज, जो रोज वाले हाथ उठाओ देखो तो सब रेगुलर। अच्छा, कोई कोई माताएं नहीं उठा रही हैं, कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर एक दिन भी मुरली मिस होती है तो ऐसे लगता है जैसे आज भोजन नहीं खाया। ये बुद्धि का भोजन है, अच्छा अच्छा चिंतन बाबा देते हैं। व्यक्त या अव्यक्त, साकार या अव्यक्त मुरलियां जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा सुंदर होमवर्क मिल जाता है जो सारा दिन मन अगर उसी में चिंतन में व्यस्त हो जाए तो व्यर्थ से अपने आप निकल जाता है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। आज की मुरली तो सबको याद होगी, कितनी मीठी सुंदर मधुबन निवासियों को सामने रख करके हमारा श्रृंगार बाबा ने किया है, किया ना अच्छा श्रृंगार। आज एक ही ऐसा श्रृंगार किया है कि अगर ये श्रृंगार हम सब कायम रखें तो माया कहीं से भी प्रवेश नहीं हो सकती। जो छोटी मोटी पारिवारिक समस्याएं हैं, जो खिटपिट हो जाती है आपस में, मन मुटाव हो जाते हैं, उन सब का समाधान आज बाबा ने बहुत सरल शब्दों में सुना दिया। एक शब्द में क्या बताया, किसको याद है? क्या? नम्रता का कवच पहन लो। कोई कुछ भी कहता है, अगर वो रॉन्ग कर रहा है तो भी तुम राइट रहो, उसको करने दो जो करता है। कोई इज्जत लेता है, कोई अपशब्द बोलता है, कोई ग्लानी करता है, तो बाबा उसकी कितनी सुंदर सुंदर युक्तियां विधियां बता रहे थे। ऐसे एक मुरली भी अगर अच्छी तरह से मनन चिंतन करके जीवन में उतार लेते हैं तो माया के अनेक रूपों को पहचान करके उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मुरली के विषय में मैं जरूर कुछ आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ड्रामानुसार करीब 36 वर्षों से लगातार मुरली पढ़ने, टाइप करने, भेजने की सेवा मुझे मधुबन में मिली। आज से 76 में मैंने मुरली डिपार्टमेंट संभाला, मधुबन में ही मुरली टाइप करना सीखा, सीख करके नहीं आया था, यहाँ ही दादियों को एप्लीकेशन दी कि मुझे टाइप सीखनी है। तो पहला प्रश्न आया कि मैं तो एक गांव से और हिंदी प्रांत से आया था और मुरलियां जो भी बाबा की साकार या व्यक्त या दादियों के जो भी पत्र व्यवहार हुए वो सब सिंधी लिपि होती है, होते हिंदी में ही है लेकिन राइटिंग सिंधी होती है। तो मुझे कहा गया कि आपको सिंधी पहले सीखनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है, सिंधी सीख के भी हम टाइप जरूर सीखेंगे। तो कुछ ही समय में टाइप सीखने के पहले पहले सिंधी सीखी, पढ़ना लिखना और सिंधी के साथ साथ टाइप सीख लिया। तो बाबा की जो पुरानी पुरानी मुरलियां थी उनको पढ़ने का, लिखने का, उसमें से प्रश्न उत्तर निकालने का बहुत अच्छा चांस कहें सेवा मिल गई। और हमारी दीदी मनमोहिनी जो इस विद्यालय की पहले बाबा के समय ही मम्मा जब अव्यक्त हुई 65 में, तो बाबा ने दीदी को अपना राइट हैंड बनाया था। 65 में मम्मा के अव्यक्त होते ही मम्मा के कमरे में दीदी को रखा। दीदी पहले दिल्ली जोन को संभालती थी, दिल्ली से यहाँ बुलाया और यहीं रखा। तो बाबा के साथ दीदी ने सब कुछ सेवाओं की जवाबदारी संभाल ली थी। जो बाबा का कार्य थे दीदी सीख गई थी साथ रह करके। जब बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी और दादी की जोड़ी बनी, सुना होगा दीदी और दादी की जोड़ी, दो शरीर आत्मा एक, ऐसा कहते थे। क्योंकि एक ने कहा दूसरे ने माना, कभी आर्ग्यू नहीं की, क्यों क्या कैसे के प्रश्न नहीं किए। दीदी को सुनाया तो दादी तक पहुंच गया, दादी को सुनाया तो दीदी तक पहुंच गया। इसलिए दोनों ने इतना सुंदर प्रशासन संभाला। 69 के बाद जिस गति से सेवाओं की वृद्धि हुई है, साकार बाबा की मुरलियों में आता है उस समय कहते थे बाबा बच्चे तुम्हारे 108 सेंटर खुलेंगे। तो सब सोचते थे 108 सेंटर कैसे खुलेंगे, एक सेंटर खोलने में इतनी मेहनत लगती है, इतना विरोध होता है, इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, और बाबा कहते 108 सेंटर खुलेंगे तो हमारी दादियां सोचने में पड़ जाते थे। फिर बाबा कहते थे तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम विदेश में भी जाकर के सब धर्म वालों को ये ज्ञान दोगे। तो दादियां सोचती थी ना मुझे इंग्लिश आती है, न मैं दूसरी भाषा जानती हूँ, और बाबा कहता तुम विश्व कल्याणकारी हो, सब विदेश में केंद्र खुलेंगे, तुम जाके सेवा करोगी, कैसे सब होगा, क्या संभव है। तो उस समय बाबा की बातें ऐसे लगती थी जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें बाबा सुना रहा है, कब प्रैक्टिकल होगा, कैसे होगा, कभी सोचा नहीं था। लेकिन बाबा का अव्यक्त होना और सेवाओं का द्वार खुल जाना, बाबा अव्यक्त हुए स्पीड पकड़ ली अव्यक्त रूप में, तो एक सेकंड में आत्मा कहीं से भी कहीं जा सकती है। और दीदी दादी की जोड़ी को निमित्त बना करके बाबा ने पूरे विश्व की सेवा कैसे कराई है, 44 साल में तो मैंने आंखों से सब कुछ देखा है। मुरली के बाद तो सुनाऊंगा ही आपको, लेकिन आज ये मुरली कैसे कोने कोने तक पहुंच रही है और हर भाषा में ट्रांसलेशन हो रही है। हमारे भारत में भी करीब 7-8 भाषाओं में ट्रांसलेशन होती है। आप लोगों को पंजाबी में शायद न मिलती हो, या आपकी जो भाषा है वहाँ की भाषा में न होती हो, लेकिन जो साउथ साइड की भाषाएं हैं, क्योंकि वो हिंदी बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, मलयालम है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, तमिल है, इन भाषाओं में सब प्रकार से हर चीज ट्रांसलेशन होती है। और इतना बड़ा विश्व है, अभी 135 देशों में लगभग बाबा के केंद्र खुले हैं। और विशेषता ये है, शायद एक ही ऐसा ये अपना संगठन है, एक ही सूर्य विश्वविद्यालय है, जो एक जैसी पढ़ाई, एक जैसा सत्संग, जो माउंट आबू में सुना जाता है वो अर्जेंटीना के कोने में सुना जाता है, जरा भी अंतर नहीं आता। उसी समय वही दिन वही तारीख वही मुरली कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भी सुने, तो उसके लिए थोड़ी मैनेज पर ध्यान देना पड़ता है। और वो सेवा दादियों ने मुझे दी, मुझे खुशी है कि ऐसी सेवा के निमित्त बनाया कि पूरे विश्व को एक साथ लेकर के चलना है। तो आज जो भी हमारे 9-10 लाख ब्राह्मण परिवार हैं, उन सबको सवेरे सवेरे प्रातः काल में जो मधुबन में सुनते हैं वो सभी वही सुनते हैं। ये करीब 13 साल पहले प्रोग्राम ऐसा बना था, जब दादी जी साकार में थी, दादी प्रकाश मणि जी, तो एक दिन मेरे को ऐसे बुला के बोली कि एक एक मास बाद में डायरेक्शन सुनते हैं लोग, मुरली सुनते हैं, जो मधुबन में आज निकलता है वो पोस्ट में जाते जाते 1-2 मास लग जाते हैं, तो कैसे वायुमंडल बनेगा? जब तक सब ब्राह्मणों का एक मत, एक संकल्प, एक संगठन नहीं होगा, तब तक पूरे विश्व के अंदर एक जैसा वायुमंडल कैसे बनेगा? तो तुम कुछ सोचो। क्या सोचो दादी, कैसे मुरली जाए जो सबको मिलने लगे? ड्रामा अनुसार बाबा साइंस के साधन देता है, साइंस भी बाबा कहता बच्चे तुम्हारे लिए ही निकली है, तो साइंस के साधन भी मिल गए, लेकिन लक्ष्य रखा कि मुरली को 3 महीने पहले बिल्कुल सेट कर दिया जाए, क्योंकि अभी तो रिवाइज ही है। बाबा जब आते हैं तो उस दिन की मुरली इंटरनेट के माध्यम से, बाबा साकार में बैठे होते हैं, अव्यक्त में बैठे हैं, और उसी समय टाइप करके ईमेल के द्वारा पूरे विश्व में भेज दिया जाता। तो ये सेवा का चांस मुझे मिला, लेकिन पहले पहले जब शुरुआत हुई, थोड़ा सा परिवार था, जब मैं आया हूँ मधुबन में, उस समय केवल 200 या 250 मुरली छपते थे, अभी 20,000 के ऊपर है, हर भाषा में है। तो उस समय साइक्लो स्टाइल मशीन थी हमारे पास, हाथ से ऐसे करते थे, बाद में बिजली की मशीन आई, और टाइप करके एक ही स्टेंसिल काटते थे हाथ से सिंधी भाषा में, और टाइप से हिंदी में और इंग्लिश में, 3 भाषाओं में हम लोग यहाँ पर मुरली तैयार करते थे। और वही मुरली भारत के कुछ गिने चुने सेंटर्स थे, एक एक कॉपी सबको भेज दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वृद्धि हुई, स्टेंसिल्स कटने लगे, कई बार टाइप करना पड़ता था। और ड्रामा अनुसार जिस भाई ने मुझे डिपार्टमेंट दी थी, सिखाया था, वो अचानक लौकिक चला गया, इसलिए पूरी डिपार्टमेंट संभालने के लिए 76 से मुझे चांस मिला। और मुरलियां वृद्धि हुई इसलिए कई बार स्टेंसिल्स काटने पड़े। पहले 200, 300, 400 कापियां स्टेंसिल से निकलती थी, लेकिन जब 1000 में आई, 2000 में आई, 3000 में आई तो एक स्टेंसिल से काम नहीं चलता था। दो बार, तीन बार, चार बार टाइप कर, सारा दिन यही धंधा मेरा रह गया। तो मुरलियां टाइप करते, फिर उससे प्रश्न उत्तर निकालते। दीदी को एक बहुत तुमंग रहता था कि जितने भी बाबा के बच्चे पत्र लिखते हैं उनका उत्तर मधुबन से जाना चाहिए, लेकिन उत्तर क्या जाएगा, उत्तर भी ज्ञान युक्त होना चाहिए, ज्ञान ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए जो इंग्लैंड आता है, जो अंतर्देशीय पत्र आता है, उसका एक साइड उसमें मुरली के प्रश्न उत्तर होते हैं और दूसरी साइड जो छोटी सी टुकड़ी होती है उसमें पत्रों का उत्तर होता है। तो कार्बन कापियां हम निकालते थे, उस समय फोटो स्टेट वगैरह नहीं था कुछ भी। तो एक बार नहीं लेकिन कम से कम 5-7-8 बार, 5-5-6-6 कापियां लगा के कार्बन से टाइप करते थे और जितना भी तैयार होता था सबको पत्र का उत्तर लिखते थे। तो ये सेवाएं दीदी जी के साथ करने का सौभाग्य मिला। मुरली जिसके पीछे हम सब इतने मस्ताने हैं, हम सब अनुभव करते हैं आज तक भी, भले रिवाइज कोर्स है, कई बार रिवाइज हुआ है, क्योंकि जब ज्ञान रिफाइन हुआ, ज्ञान को सीधा ही बाबा ने आते ही परफेक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ए बी सी डी से पढ़ाया जाता है ऐसे ही धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान के रहस्य खोले हैं। कराची में जब तक रहे 14 साल तक हैदराबाद और कराची में रहे तो प्रिंटिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय बहुत छोटा सा परिवार था, 300-400 बहने भाई थे, साथ में ही रहते थे, तो मुरली बाबा चलाते थे, नोट्स ले लेते थे और वही मुरली रिवाइज कर लेते थे या बाबा लिख करके देते थे, बोलते नहीं थे। और टेप मशीन तो थी ही नहीं, आज जैसा मोबाइल है रख दिया रिकॉर्डिंग हो गई, ये साधन तो थे ही नहीं। तो उस समय की मुरलियां कोई रिकॉर्ड नहीं हुई और कोई प्रिंट नहीं हुई। और जब बाबा कराची से आबू आने लगे तो वहां के जो भाई बहने थे उन्होंने कहा कि बाबा, पहले तो आने नहीं दे रहे थे, लेकिन जब बहुत फोर्स लगा 50 में, पार्टीशन के 3 साल के बाद 1950 में जब आने लगे तो उन्होंने कहा अच्छा जाना ही है तो सब सामान सहित जा सकते। और जो सामान था, एक स्टीमर में 400 लोग हों, उसमें सामान सारा सबका हो, बिस्तर, खाने पीने का सामान, तो सबसे ज्यादा जो लोड था वो था डायरियों का, क्योंकि सबने नोट्स लिए थे और वो नोट्स इतने अधिक थे। तो बाबा ने कहा कि इन डायरियों का वजन करो, तो सबसे अधिक वजन डायरियों का ही था। तो बाबा ने बड़ी युक्ति की कि अगर बच्चों को कहेंगे ऐसे छोड़ दो तो ये छोड़ेंगे नहीं, इस ज्ञान रहता ना इसके अंदर, यही ले जाना चाहेंगे, भले खाना पीना का, वस्त्रों का छोड़ दें, लेकिन जरूरी तो वो है, क्योंकि भारत में आते ही कहां से मधुगरी आएगी, कहां से पैसा आएगा। तो बाबा ने बड़ी युक्ति से उन सबको कहा कि बच्चे ये बताओ द्वापर में जो शास्त्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जब भूकंप आएगा तो जमीन में जो चीजें दबदबी हुई वो बाहर आएंगी और उससे ही शास्त्र बनेंगे। इसलिए ऐसा करो जो तुम्हारे पास सब डायरियां हैं वो सब ले आओ। और एक बहुत बड़ा लोहे का टैंक मंगवाया और जमीन में खड्डा खुदवाया, कहा सब लोग अपनी अपनी डायरी इसके अंदर बहुत संभाल के रख दो, ये द्वापर में जब भूकंप आएगा तब निकलेगा और शास्त्र बनेगा। इसलिए 14 साल का जो इनके पास रिकॉर्ड था वो तो वहीं पर द्वापर के लिए रख दिया गया। और फिर जब यहां आए तो 2 साल तो कोई सेवाएं नहीं थी, 52 तक बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी और सेवाएं होती भी नहीं अगर एक पेपर बाबा नहीं लेता। बड़ी युक्ति से एक पेपर लिया और वो पेपर ऐसा आया वो एकदम बेगरी पार्ट शुरू हो गया, माना जो लाए थे कॉपी करके पूरा कर दिया। तो कई बच्चे बाबा के, एक तो समुद्र के किनारे से पहाड़ पर आए तो बीमार पड़ने लगे। यहाँ की हवा पानी, यहाँ की ठंडक सूट नहीं कर रही थी, तो कई तो बीमार होने लगे। और दूसरी बात कि खाना पीना जो लाए थे वो खा पी के पूरा कर दिया, खाली हो गए, बेघर हो गए। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुमको मैंने इतना धन दिया है, ज्ञान धन दिया है, गुणों का धन दिया है, शक्तियों का धन दिया है, इसको बांटो, ये बांटने से बढ़ेगा। तो कई बच्चे सोच रहे थे हम जा करके कमा करके ले आए, क्योंकि यंग तो थे ही, कोई ज्यादा बड़ी एज तो थी नहीं, कोई 25 साल 30 साल के मुश्किल से उसके अंडर थे। तो सब ने सोचा कि हम कमा के ले आए। तो कुछ एक अपने लौकिक संबंधियों के निमंत्रण पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, सिंधी लोग तो सब आ गए थे पहले भाग करके, उन्होंने सोचा अब सब आ गए हैं तो अब संस्था टूट जाएगी, इसलिए मदद भी नहीं की और साथ में बुलाने लगे कि तुम हमारे पास आ जाओ, तुम्हारे पास आ जाओ। तो कुछ भाई बहने जो चले गए वो तो माया, बाबा कहता है माया तो अजगर बन करके मुंह खोल के खड़ी है, तुम जरा भी अगर दुनिया की तरफ देखोगे तो खा जाएगी। तो जो गए वो तो दुनिया वाले बन गए, लेकिन जो पक्के थे मरेंगे जिएंगे जैसे बाबा रखेगा, उन्होंने फिर बाबा की आज्ञा के अनुसार सेवाएं शुरू की। और बाबा ने जो चित्र बनाए थे कराची में, वो चित्र ले आए थे, वही झाड़, त्रिमूर्ति, गोला, सृष्टि चक्र, यही जो मुख्य चित्र थे, वही चित्र लेकर के बहने गई और गंगा जमुना की नदियों के किनारे बैठ करके ज्ञान देना शुरू कर दिया। अब इतना ऊंचा ज्ञान और ये फरिश्ते 14 साल तपस्या किए हुए जब गए तो उनको देख करके लोगों को साक्षात्कार होने लगे और अनुभूतियां होने लगी कि ये तो देवियां हैं, ये साधारण तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, दीदी यहां क्यों बैठी हो तुम, चलो हम तुमको मकान देते हैं, यही सेवा करनी है तो मकान लो, ये करो, सब मिलने लगा। वहीं से ही सेंटर खुले, दिल्ली में खुला, पंजाब में खुला, फिर यूपी में खुले और वो 52 के बाद सेवाएं विधिवत शुरू हुई। तब मुरलियों की प्रिंटिंग शुरू हुई, 5 कॉपी 10 कॉपी, जहां जहां केंद्र खुलते गए धीरे धीरे, पहले फोटो कॉपी, कार्बन कॉपियां, फिर साइक्लो स्टाइल। लेकिन ज्ञान को बहुत धीरे धीरे बाबा ने स्पष्ट किया, पहले कुछ बातें शास्त्रों के आधार से ही सुनाई थी, क्योंकि अगर सीधा ही कह देता कि आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है, तो कई बातें ऐसे लगती थी बहुत कैसे योग लगाएंगे, बिंदु को कैसे याद करेंगे। तो पहले तो बाबा इतना गुप्त रहा जो अपना परिचय भी नहीं दिया, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देखते थे, कृष्ण का साक्षात्कार होता था, लोग समझते थे यही भगवान है और उसी के आकर्षण में सब आते जाते थे। शिव बाबा ने धीरे धीरे अपना परिचय दिया, मैं निराकार हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, मैं परम धाम वासी हूँ, आत्मा का स्वरूप अंगुष्ठाकार नहीं है, अगर अंगुष्ठाकार होता तो यहाँ पर गोला निकल आता, वो तो भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस प्रकार से ज्ञान को बहुत धीरे धीरे, कभी एक बात कभी दूसरी बात, धीरे धीरे स्पष्ट किया। और वो ज्ञान जब स्पष्ट हुआ 62-63 तक, 10-12 साल लगे धीरे धीरे खुला, सब ज्ञान स्पष्ट किया। और फिर मुरली चलाई कि बच्चे पुरानी बातें शास्त्रों के आधार से ही हैं, इसलिए सारी मुरलियां जला दो, बेचना नहीं, देना नहीं। तो इसलिए 62 तक का जो रिकॉर्ड था वो बाबा ने खत्म करा दिया, रखा ही नहीं, रखने नहीं दिया साकार में। और फिर एकदम जब रिफाइन हुआ, आत्मा ज्योति बिंदु है, परम धाम निवासी है, ये तीन लोकों का ज्ञान दिखाया सब बाबा ने था साक्षात्कार में, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट किया। और वो जब रिफाइन हुआ वो मुरलियां बची केवल 5 साल की, क्योंकि बाबा अव्यक्त हुए 69 में। जब बाबा अव्यक्त हुए तो 2 दिन बहुत हलचल हो गई, पता होगा आपको सब कहानियां, अब क्या होगा, मुरली कैसे चलेगी, सेंटर्स पर कैसे सब कार्य चलेंगे, बाबा तो चला गया, बताया ही नहीं कुछ। तो फिर बाबा 21 जनवरी को संस्कार के बाद जब बाबा का ब्रह्मा बाबा का संस्कार यहाँ शांति स्तंभ पर हो गया, उसके बाद गुलजार दादी भोग लगाने के लिए गई और बाबा आए और बाबा ने सब डायरेक्शन दे दिए। अभी कौन संभालेगा, कैसे चलेगा, मुरली क्या रिवाइज होगी, पत्र व्यवहार कौन करेगा, दीदी और दादी के ऊपर कलश रख करके बाबा ने शुरुआत कराई। 69 से 21 जनवरी से मुरलियां रिवाइज हुई। और कौन सी रिवाइज हुई? जो 63, 62 से 968 तक की थी। अब रिवाइज हो रही थी तो रिवाइज होते होते सेंटर्स खुलते गए, वृद्धि होती गई, नए नए बच्चे निकलते गए, तो दादियों को बहुत संकल्प चलता था कि रिवाइज मुरली को कोई ऐसा न समझे कि हमें कुछ नया नहीं मिला, वही हम पढ़ रहे हैं। तो हमेशा दादी कुछ न कुछ नवीनता कराती थी, सुनाने का तरीका भी, क्योंकि दीदी मुरली सुनाती नहीं थी, मुरली केवल दादी सुनाते थे, अधिकार उनको ही था मुरली सुनाने का। बाबा की मुरली को बहुत अच्छी तरह से मनन करके, चिंतन करके, 5-10 मिनट पहले मुरली बोल करके, मुरली के ऊपर उसका सार सुना करके, फिर मुरली ज्ञान डांस की रीति से सुनाते, सुनने वाले एकदम मग्न हो जाएं, डांस करने लगे। दादी जैसे मुरली अभी तक कोई नहीं सुनाई, डांस कराती थी और बहुत सरल शब्दों में, एकदम मधुर शब्दों में बाबा की सीधी सीधी मुरली सुना देते थे। फिर कहती थी, जब मैंने टाइप करना शुरू किया तो कहती थी कि देखो हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, अगर सीधी मुरली पढ़ती हैं तो कई भाई बहनों के पास टाइम भी कम होता है और समझ में भी नहीं आता बाबा क्या कहना चाहता है, तो ऐसा करो कि इसका एसेंस लिखो, पूरी मुरली का सार क्या है वो लिखो, और फिर जो मैं सुनाती हूँ, प्रश्न करती हूँ क्लास में, वो प्रश्न नोट करो और प्रश्न लिखो। तो ये शुरुआत दादी ने 78 के बाद कराई, 76 से 78 से शुरू हुई। इसमें जो ऊपर की एडिंग है, जो क्वेश्चन आंसर है, उसके बहुत समय के बाद फिर धारणा के लिए मुख्य सार एड हुआ और मैं समझता हूँ 88 के बाद वरदान शुरू हुए। ये सारा ये प्रोसेस क्यों शुरू कराया बाबा ने, दादियों ने, क्योंकि बाबा के बच्चे वीआईपी जेड होने लगे, और वीआईपी माना जिसके पास बहुत कम टाइम हो, वो सोचता है कि हमको फोन पर मुरली सुना दो, इतना टाइम नहीं है जो मैं क्लास में आऊं, तो बहनें फोन पर क्या सुनाएंगी, कोई अपनी बात और कोई सुनाएगा, कोई पूरी मुरली सुनाने की कोशिश करेगा। तो इसी लक्ष्य से इस सार, क्वेश्चन आंसर या वरदान स्लोगन दादियों ने शुरू कराए, ताकि सारी मुरली अगर कोई नहीं सुन सकता है, पूरा टाइम नहीं है किसी के पास, तो इतना तो जरूर रोज उसको अच्छी बात मिले। ये मुरली हमारे चिंतन को चेंज करने के लिए है, हमारे नेगेटिव थॉट्स को परिवर्तन करने के लिए है, हमारी विकारी भावनाओं को समाप्त करने के लिए। अगर कोई मुरली सुन रहा है और उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता है, तो बाबा एक बहुत रमणीक बात कई बार सुनाते हैं, कुछ दिन पहले सुना होगा आपने साकार बाबा की मुरली में। बाबा ने कहा सपेरा जो होता है वो भी बांस की मुरली बजाता है, बांसुरी कहते हैं ना, वो जो बजाता है, और जब सांप को कहीं निकालना होता, कहीं किसी के घरों में छिपे होते हैं जहरीले सांप, तो पहले बहुत प्यार से मुरली बजाता है, बांसुरी बजा करके, और फिर वो मुग्ध हो जाता है मुरली की धुन पर, नाचने लगता है, डांस करने लगता है, और जब वो डांस करने लगता है तो उसको धीरे से पकड़ करके उसके जहर के दांत निकाल देता है, और जहर के दांत निकालने के बाद वो फिर अपनी टोकरी में सांप को रख लेता है और फिर सबको मनोरंजन करके पैसा कमाता है। देखा है, बस सपेरे होते हैं जो सांप नचाते हैं, उनके अंदर जहर नहीं होता, वो पकड़ लेंगे, गले में डाल लेंगे, डांस कराएंगे। तो बाबा भी कहता है मैं भी ऐसा ही सपेरा हूँ, मैं बच्चों को ज्ञान डांस कराता हूँ, ऐसी मुरली बजाता हूँ जो मग्न हो जाएं, मुग्ध हो जाएं। और अगर मग्न हो गए, मुग्ध हो गए, तो मैं फिर उनसे ये विष के दांत निकाल देता हूँ। काम क्रोध लोभ मोह के दांत जो हैं, वो जहरीले दांत जब तक हैं, तब तक मैं उनको अपना बच्चा बना के अपनी पेटली में नहीं रखता। इसलिए पहले मैं बहुत प्यार से मुरली सुनाता हूँ, आप सब बहुत प्यार से बाबा की मुरली सुनो और ऐसे सुनो जो मुग्ध हो जाओ। मस्त मस्तानी गोपिकाएं, शास्त्रों में मुरली के लिए बहुत गायन है। श्री कृष्ण की मुरली दिखाई है, काठ की मुरली दिखाई है, और उसके लिए कहते हैं वो बजाता था तो गोप गोपियां इतने मुग्ध हो जाते थे। तो गोपियों के लिए तो कहते हैं कभी एक पैर में चप्पल होता था, दूसरे में नहीं होता था। बांसुरी बजी, मुरली बजी, माना वो घर को छोड़ के भागेंगी। रोटी पका रही है, भले कच्ची हो छोड़ दो, जल रहा है जलने दो, काजल लगाया या नहीं लगाया चलो एक आंख, ऐसे गायन है शास्त्रों में। मुरली की धुन पर मस्तानी हो जाती, मग्न हो जाती। वो कौन सी मुरली है? काठ की है क्या? ये बाबा के ज्ञान रत्नों की मुरली है, ये ज्ञान रत्न है। और इन रत्नों से अगर खेलना आ जाए तो कंकड़ पत्थर सब छूट जाएंगे। हम लोगों ने कोई दूसरी पढ़ाई नहीं की है, 15-16 साल की उम्र में कितनी पढ़ाई की, 9th-10th तक है? लेकिन बाबा अभी तक भी पढ़ा रहा है और मैं स्टूडेंट हूँ। पूरे विश्व को पढ़ाने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया। क्यों? क्योंकि बाबा की पढ़ाई के सिवाय और दूसरा कुछ अध्ययन नहीं करता हूँ मैं। ये किताबें पढ़ी, वो किताबें पढ़ी, इधर की कहानियां पढ़ी, उधर की कहानियां पढ़ी, एक लेक्चर दे दिया, क्या असर पड़ेगा लोगों को? भगवान कहता है मैं आप बच्चों को नॉलेज फुल बनाता हूँ। क्या बाबा ने नहीं पढ़ाया? इतिहास नहीं पढ़ाया, भूगोल नहीं पढ़ाया, गणित नहीं पढ़ाया, साइंस नहीं पढ़ाई, सब कुछ पढ़ा दिया। एक एक बच्चे को आजकल हम लोग अभियान निकालते हैं तो हमारे टीचर्स बहने उसमें होती हैं जिन्होंने कभी गेहूं का खेत भी नहीं देखा हो, जिन्होंने फसल भी नहीं देखी हो, और वो खेती पर इससे लेक्चर करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट को परास्त कर देती हैं, कैसे खेती करनी चाहिए, कैसे खाद डालनी चाहिए, कैसे योग करना चाहिए। सो साइंटिस्ट सोचते हैं पता नहीं कौन सी डिग्री लेकर के आई है, कहां से पढ़ करके आई है। बाबा ने क्या नहीं पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा जाता है ना। और जो नहीं पढ़ाता है कहता बच्चे अगर तुम बुद्धू भी हो, तुम बैठ जाओ मेरी याद में, मैं प्रवेश करके बोल दूंगा, इतना तो गारंटी लेता है वो। तो बाबा ने हमको सब कुछ पढ़ाया है, कुछ नहीं छोड़ा मुरली के अंदर। ध्यान से अगर मुरली पढ़ो तो उसमें चार सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट के पीछे बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, बिना लक्ष्य के उद्देश्य नहीं है। तो बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, जो उद्देश्य रख करके हमको पढ़ाया है, उसके मूल कुछ बातें मैं आपके आगे रखता हूँ। क्योंकि ज्ञान की पॉइंट्स को अगर आप हाईलाइट करेंगे तो बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, पुनर्जन्म का ज्ञान, परमधाम का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, जितना ज्ञान दिया है वो इतना नए ढंग से दिया है, नवीनता है, और इतना स्पष्ट है जो कहीं पर भी कोई बच्चा मूंझ नहीं सकता, भले कितना भी शास्त्र पढ़ाओ। कई बार बाबा कह देते हैं, जगदीश भाई हमारे जो थे ना बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे, तो बाबा ने पहले पहले जब उनको देखा बहुत क्वेश्चन करते थे दादियों से, तो इतने क्वेश्चन करते थे, कोई दादी उनके सामने कोर्स कराने नहीं जाती थी। एक कुंज दादी थी जो हिम्मत करके उनके सामने कोर्स कराने जाते थे, क्योंकि उन्होंने सारे वेद शास्त्र पढ़े हुए थे। बहुत प्रश्न थे मन में, बाबा के सामने आए तो बाबा ने एक मुरली चलाई, बच्चे जब तक तुमने शास्त्रों का भूसा अंदर से नहीं निकाला है तब तक ज्ञान अंदर नहीं बैठेगा। ये भूसा जो भर गया ना, 84 लाख का है, सर्वव्यापी का है, गीता के भगवान का है, सब भूसा इतना भर गया है, कुछ नहीं उसके अंदर। भूसा में क्या होता है? ताकत कुछ नहीं है, वैल्यू उसकी कुछ नहीं है, लेकिन उसके पीछे इतने लोग हैं। सत्य वचन महाराज यही है, सत्य है। अरे समझो तो क्या है सत्य? कहाँ सर्वव्यापी भगवान है, कहाँ गीता का भगवान वो है, क्या गीता का ज्ञान दिया, क्या द्वापर में गीता का ज्ञान दे के कलयुग ला दिया? कोई विचार नहीं करता, लेकिन हाँ सुन रहे हैं सत्य वचन, सत्य वचन। सोचते हैं अगर कुछ कह देंगे सुनाने वाले के आगे, कोई आर्ग्यू करेंगे तो श्राप दे देगा, वो डर जाते हैं। बाबा ने हमको आर्ग्यू करने की मना की, आर्ग्यू नहीं करना किसी से, डिबेट नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, लेकिन सत्य ज्ञान है उसका प्रूफ है हमारी प्रत्यक्ष जीवन। गीता कहती है काम करो नरक के द्वार हैं, कोई ने जीत के दिखाया? बाबा ने सिर्फ कहा और बच्चों ने जीत लिया। बाबा भी अचंभित थे उस समय जब ये महावाक्य बाबा के डायरेक्ट सुनना शुरू किया बच्चों ने, क्योंकि पहले तो बाबा भी गीता लेके ही सुनाता था, शुरुआत हुई ज्ञान की ओम मंडली की, तो बाबा तो गीता पाठी थे, तो लोग तो गीता ज्ञान सुनने के लिए आने आए सत्संग में, उनको क्या पता इनके अंदर भी शिव बाबा प्रवेश हो गया। गीता सामने है, बाबा गीता को देख रहा है और बोल रहा शिव बाबा ये गीता पढ़ना छूट गए। वो गीता छूट गई और उसके द्वारा शिव बाबा बोल रहा है और बच्चों को कह रहा है काम करो नरक के द्वार हैं। छोटे छोटे बच्चे नए नए, कोई ने शादी की है, कोई छोटे हैं, सबके अंदर आ गया काम महाशत्रु है, काम को मुझे जीतना है। कितना हंगामा हो गया। बाबा को बहुत लोगों ने गालियां देना शुरू, बाबा के मैं कहता नहीं हूं, मैं तो वही गीता सुनाता हूं, मैंने कब कहा तुम छोड़ो, मैं खुद गृहस्थी हूं। बाबा फंस गया बीच में और शिव बाबा ने अपना जादू शुरू कर दिया। ये मुरली की जादू है, ये बाबा के ज्ञान का जादू है, और उस जादू को ऐसा लोगों ने अपनाया जो उनके जीवन में आने लगा। तो सत्य ज्ञान है उसका प्रमाण है, उसका प्रूफ है कि हमारी जीवन उससे आधार से बन रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्ञान सुन रहा है, रोज मुरली सुन रहा है और जीवन में काम क्रोध या कोई भी विकार जीत नहीं पाया, तो ये भी बाबा कहता है ज्ञान की ग्लानी है। कोई भी ऐसा ज्ञान की ग्लानी मत कराए, सुन रहे हैं तो जरूर कुछ तो धारणा 5% 10% कुछ तो धारणा जीवन में हो। इसलिए ज्ञान की सब्जेक्ट को सुनते सुनते उसकी ऑब्जेक्ट को समझना, जितनी बातें बाबा सुना रहा है उसके पीछे लक्ष्य रखा है कि सब बच्चे बंधनों से मुक्त हो जाएं। क्योंकि हम सब 84 जन्मों में देह का बंधन, संबंधों का बंधन, पदार्थों का बंधन, संस्कारों का बंधन, समाज का बंधन, शास्त्रों का बंधन, गुरुओं का बंधन, धर्म का बंधन, कितने प्रकार के बंधनों में जकड़ गए थे। गृहस्थी ऐसे बन गए जो सब जंजीरें ऐसे ऐसे पड़ गई। ज्ञान किसलिए बाबा ने दिया है? अगर ज्ञानी तू आत्मा है तो उसकी पहली निशानी है वो मुक्त हो जाए, जीवन में रहे और मुक्त हो जाए। ज्ञान की ऑब्जेक्ट यही है। घर चलने का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है देह से मुक्त हो जाए, परमात्मा का ज्ञान मिला है सब संबंध उससे जोड़ के संबंधों से मुक्त हो जाए, घर का ज्ञान मिला है वो दुनिया से मुक्त हो जाए, न्यारी हो जाए। जो ज्ञान बाबा ने दिया है अगर उस ज्ञान को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतार रहे हैं तो उसकी सबसे अच्छी निशानी कि हमारे बंधन कटते जाएंगे। अगर बंधन में बंधे हुई आत्मा है माना वो अभी तक ज्ञान को समझा नहीं है। मन का बंधन सबसे बड़ा बंधन है, संस्कारों का बंधन उससे भी बड़ा बंधन है। मन और संस्कारों के बंधन को जिसने काट लिया, न देह बांध सकती है, न संबंध बांध सकते हैं, न पदार्थ बांध सकते हैं, न कोई देहधारी बांध सकते हैं। इसलिए ज्ञान की हर बात को ऐसे नोट करो, ऐसे अपने पास लिख करके रखो, ये जो बाबा ने हमें बताया है ये ज्ञान की पॉइंट मुझे किस बंधन से छूटने के लिए है। आर्ग्यू करने के लिए नहीं है, बहस करने के लिए नहीं है, और ये ज्ञान सदा चलने वाला भी नहीं है, ये भी जानता है बाबा कि सत्ययुग त्रेता में सब भूल जाओगे। केवल संगम पर मैं ये ज्ञान सुना रहा हूँ, ये मुरली संगम पर चल रही है, सत्ययुग में होगी ना, सुनेंगे आके सत्ययुग माताएं, भागेंगे क्लास सुनने के लिए, ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ज्ञान केवल सत्ययुग संगम पर है, सत्ययुग त्रेता की स्थापना हो गई तो ज्ञान की प्रारब्ध है। द्वापर और कलयुग में भक्ति है और संगम पर ज्ञान है। इसलिए संगम पर ज्ञान दे करके बाबा हम सबको जीवन मुक्त बनाना चाहता है। और अगर ज्ञान की पॉइंट्स हम मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्वरूप में ला रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, तो हम जरूर चेक करें कि मेरे कोई भी बंधन अभी तक हैं, किस बात की, किस ज्ञान की कमी है। ज्ञान माना समझ, ज्ञान समझ से यूज करो कि किस लिए बाबा ने ज्ञान दिया है। आत्मा का ज्ञान किस लिए इतना पक्का कराता, कोई मुरली नहीं है जिसमें मैं कहता हूं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय को, क्योंकि फुल बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान में फंस गए और देह अभिमान माना ही कोई न कोई कर्मेंद्रिय अपने अधीन किए हुए है, बंधन में बांधे हुए है। किसी को आंख धोखा दे रही, किसी को मुख, किसी को कान, किसी को हाथ, कोई न कोई कर्मेंद्रिय आत्मा को अपने बंधन में बांधे हुए है। अगर आत्मा का ज्ञान मिल गया कि मैं आत्मा स्वशासक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों को जैसे चाहूं वैसे चलाऊं, तो मालिकपन की स्थिति में आते ही, अपने स्वधर्म में स्थित होते ही, ये सब कर्मेंद्रियां उसके कंट्रोल में हो जाते, इन सब बंधनों से मुक्त हो जाते। तो इन सब प्रकार के ज्ञान की हर बात को इस तरह से समझ करके चलना कि ये ज्ञान जो बाबा ने दिया है वो इस प्रकार के बंधन से मुक्त होने के लिए है। डिटेल बहुत है, एक ही टॉपिक पर क्लास हो सकता है, सार में मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि चारों विषय को आप स्पष्ट समझ जाएं कि बाबा चार सब्जेक्ट को लेकर साकार मूल्यों में विशेष अंडरलाइन कराई है, चारों सब्जेक्ट के हिंट्स दी हैं, अव्यक्त रूप में केवल धारणाओं पर ध्यान खिंचवाया है। अव्यक्त रूप में जैसे बाबा बन गया संपन्न संपूर्ण, अपने समान बनाने के लिए हर धारणा की बात को बहुत हाईलाइट किया है और एक सब्जेक्ट को ही उठाया है, लेकिन साकार बाबा की मुरलियां ज्ञान सागर की हैं, उछल है उसके अंदर, चारों सब्जेक्ट को कवर करती है। इसलिए साकार बाबा की मुरली कई कहते हैं उसमें तो रसी नहीं आता है, पता नहीं बाबा जंप मारता है, कभी कोई बात सुनाता है, कभी कोई सुनाता है, बाबा कोई पढ़ के थोड़ी सुना रहा है, जैसे बच्चे हैं वैसा बाबा कह रहा है। मुरली के अंदर ही कई मून जाते हैं, बाबा आज ये कहा, आज ये कह दिया, क्या बात है आखिर। एक दिन कहता है बच्चे बायोस्कोप नहीं देखना, ये सिनेमा पाप की माँ है, दूसरे दिन कहता है बच्चे कोई बात नहीं, अगर देखना पड़ता तो देख लेना। एक दिन कहता है कहीं भी बाहर का खाना नहीं खाना, दूसरे दिन कहता अच्छा बच्चे योग में रह के खा सकते हो। कई बच्चे वो अपनी मन की बात, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बाबा ने छुट्टी दी है उसको ही उठा लेते हैं, जो श्रीमत है उसको भूल जाते हैं। वो किसके लिए कहा है, किस बात को देख के कहा है, किस बच्चे को देख के कहा है, मुरली तो वही बन गई ना, जो बोला वो मुरली बन गई। जिस प्रकार के बच्चे सामने आए, आज कोई मिलिट्री वाला बच्चा बाबा के सामने आया, वो बॉर्डर पर सेवा दे रहा है, अब बॉर्डर पर सेवा देने वाले को बाबा क्या कहेगा, बच्चे अपने हाथ से बना के खाओ, उसके पास बंधन है, वो नहीं कर सकता है, भूखा भी नहीं रह सकता है, उसको अपनी ड्यूटी देनी है, इसलिए बाबा उसको कहेगा बच्चे कोई अर्जा नहीं, योग में लेके थाली आई है, बाबा को याद करो, भोग लगा के खा लो। लेकिन आप प्रवृत्ति में रह रहे हो, घर गृहस्थ में रहे हो, फिर आपको बाबा क्यों कहेगा कि नहीं थाली आई है भले भोग लगा के ऐसे खा लो, किसी का योगी के हाथ का खाओ, सात्विक खाओ, सब प्रकार की परहेज उनके लिए है। तो जिस प्रकार का बच्चा सामने उस प्रकार की श्रीमत वो मुरली बन गई। इसलिए ज्ञान को अच्छी तरह से समझना, ये ज्ञान हम आत्मा को देव बनाने के लिए है, ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। और फिर है योग, योग की सब्जेक्ट को मैं शाम को अच्छी तरह से लूंगा, आज ही दूसरे टॉपिक पर क्लास कराऊंगा, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा सा विदेश यात्रा पर जाना है, इसलिए बिजी हूं, आज ही दूसरा क्लास कराऊंगा योग पर, क्योंकि दूसरी सब्जेक्ट बहुत अंडरलाइन है। हर सब्जेक्ट में आपने देखा होगा योग को बाबा बहुत हाईलाइट करता है। तीन चार दिन पहले साकार मुरली के अंदर मैं पॉइंट्स ऐसे नोट करने लगा, योग माना क्या, योग किस लिए बाबा सिखाता है, 16 पॉइंट नोट किया। आदत डालेंगे आपको मुरली से बहुत अच्छी अच्छी, कभी ज्ञान की लहरें, कभी योग की लहरें, कभी धारणा की, कभी सेवा की, चारों सब्जेक्ट की मिलेंगी। योग है आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए। आत्मा की खाद जो है, मैल है, विकर्मों की, बुराइयों की, पापों को समाप्त करने के लिए बाबा ने योग की अग्नि, याद की यात्रा सिखाई है। आत्मा अगर याद की यात्रा पर रहेगी, योग को यथार्थ रीति से समझ करके उसको पालन करेगी, योगी बन के रहेगी, तो धीरे धीरे उसकी जो मैल है, जो विकारों की खाद के ऊपर जम गई, वो निकल जाएगी। तीसरी सब्जेक्ट धारणा की है, और धारणाएं बाबा इसलिए अंडरलाइन कराता है क्योंकि धारणाओं के बिना सत्य धर्म की स्थापना नहीं होती। एक देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, आधा कल्प तक एक धर्म रहे, उसके लिए जितनी धारणाएं मजबूत हों, हर गुण की धारणा है, हर शक्ति की धारणा है, हर ज्ञान के पॉइंट की धारणा है, धारणा माना ही, कुछ भी सहन करना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, लेकिन कहते हैं धर्म जाए लेकिन धर्म न जाए, लेकिन वचन जाए पर धर्म न जाए। तो हम सब अपने वचन पर कायम रहें, कभी भी हमारे वचन को कोई खंडित न कर सके, इसलिए बहुत दृढ़ता के साथ अपने इस धारणा के धर्म को पालन करना है। धारणाएं हैं ही, चाहे प्योरिटी की धारणा है, चाहे खान पान की धारणा है, चाहे संघ की धारणा है, जो भी धारणाएं हम इस विद्यालय में सीख रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए हैं। और बाबा चाहता है धरत पर ये धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए इसमें आप पक्के रहें, तो ये सत धर्म, देवी देवता धर्म स्थापित हो जाए। और सेवा के लिए हम सबको बाबा रोज कुछ न कुछ पुश करता है, बल भरता है कि बच्चे सेवा से राजधानी स्थापित होती है। सेवा नहीं करेंगे तो राजधानी नहीं बनेगी, इसलिए जो कुछ मिला है इसका दान करो, लोगों को सुनाओ। स्वराज्य अधिकारी स्थिति से भी कर्मेंद्रियों पर जीत पहने से राजाई मिलती, और साथ साथ अगर हम दूसरी आत्माओं को ज्ञान दान करते हैं, गुण दान करते हैं, शक्तियों का दान करते हैं, जो मिला है वो दूसरों को देते हैं, तो सुख दो सुख लो, सेवा है ही सुख देना सुख लेना। और जितना हम दूसरों को देते हैं उतना हमारी बड़ी राजधानी बनती जा रही है। इसलिए बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपनी राजधानी पर कभी कभी नजर डालो, कितनी आत्माओं तक हमने संदेश पहुंचाया है, कोई आत्मा वंचित न रह जाए। बाबा का संदेश सबको मिले उसके लिए सेवा के कई साधन हैं, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा। खूब प्यार से जितनी हो सके जो कुछ बाबा ने दिया है वो मैं दान करूं, दूसरों को दूं, और सेवा करके अपनी नई राजधानी बना दूं। और पांचवी एक बात और स्थापन हो रही है, क्योंकि एक धर्म है, एक राज्य है, एक कुल है, एक परिवार, एक फैमिली। अगर हम सब देखें संगम पर, आप मधुबन की फैमिली को देखो, अपने सेंटर्स पर आने वाले भाई बहनों को देखो, ये केवल सत्संग नहीं है, ये केवल पाठशाला नहीं है, लेकिन एक परिवार है। बाबा हमेशा कहते हैं माता पिता भाई बहन है, और कोई संबंध नहीं है। शिव बाबा ग्रैंडफादर, ब्रह्मा बाबा फादर, सरस्वती माँ, और हम सब भाई बहने। ये इतना वंडरफुल परिवार संगम पर है जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, सच्चे दिल से एक दूसरे के मददगार हैं, परिवार माना ही समय पर एक दूसरे का साथ देना, परिवार माना ही एक दूसरे की कमियों को समाना और एक दूसरे के मददगार बनना, जो आज बाबा ने बड़ा अंडरलाइन किया परिवार के लिए, कि बच्चे कोई कमी कमजोरी किसी की देखते हो तो उसको मिटाने में सहयोग का नोट दो, सहयोग करो जिससे वो मिट जाए कमी उसकी, उसका वर्णन चिंतन नहीं करो। ये परिवार के लिए शिक्षा है। परिवार में माँ बाप अपने बच्चों की कोई भी बात बाहर सुनाना नहीं चाहता है। अगर देखता है इस बच्चे ने गलती की है, भूल की है, माँ को पता चलती है तो कहती तुम बच्चा भूल जा, तुम किसी को नहीं बताना, मैं भी नहीं बताऊंगी। जहाँ समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, वो परिवार के अंदर आती है। तो हम सब एक परिवार के हैं, इसलिए ईश्वरीय परिवार की स्थापना भी बाबा कर रहा है, दैवी परिवार की। सतयुग के अंदर भी भले पद अलग अलग होंगे लेकिन राजा ही मात पिता के रूप में पालनहार होगा। एक परिवार के रूप में सत्युगी राज्य चलेगा। जैसे मधुबन का परिवार देखते हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, इंचार्ज अलग अलग हैं, लेकिन सब एक मत होकर के एक के डायरेक्शन से एक यज्ञ से खा करके एक यज्ञ में रह करके सब प्रकार की सेवाएं करते हैं। बाबा कहता है यही विधि सतयुगी परिवार की होगी। सतयुग में भी राजा प्रजा दास दासी नौकर चाकर सब होंगे लेकिन कोई उस भान में नहीं रहेगा। ये तो सब जाति और धर्म के भेद द्वापर से शुरू हुए हैं। वहाँ तो एक फैमिली है, एक परिवार है, सूर्यवंशी घराना और चंद्रवंशी घराना चलता है। तो ऐसी स्थापना के लिए बाबा की मुरलियां चलती हैं। पांचों बातों को नोट करके ज्ञान योग धारणा सेवा और परिवार की कई बातें आती हैं, इन सब को नोट करो तो मुरली आपको यथार्थ समझ में आएगी। सिर्फ ऊपर ऊपर से मुरली नहीं सुनो लेकिन मुरली को ध्यान से एक बार सुनो, फिर समय मिले तो पढ़ो जरूर। कई बार वो पढ़ने के पर स्पष्ट समझ में आती और कई पढ़ने के समय बुद्धि अगर जाती इधर उधर तो सुनने के समय स्पष्ट हो जाता। इसलिए जितना सुनने का महत्व उतना पढ़ने का भी ध्यान रखो और पढ़ने के समय भी उसको हाईलाइट करना। ये बात आज हाईलाइट है। हम लोग अभी तक भी किसी दिन की मुरली आज तक भले कितनी बार, मैं समझता हूँ 50 बार मैंने टाइप की हो, रिपीट की होगी, पढ़ी होगी, क्वेश्चन आंसर निकाले होंगे, लेकिन अगर आज की मुरली मैंने पढ़ू तो ऐसे लगता है जैसे कुछ मिस हो गया, भोजन नहीं खाया, नाश्ता कैसे करेंगे। तो पहले इसलिए मुरली पढ़ करके उस पर मनन चिंतन करके कुछ न कुछ पॉइंट्स बाबा की नोट करके अपने लिए, उस समय नहीं नोट करते हो तो बाद में मनन करके नोट करो, आपको बहुत अच्छी खुराक मिल जाएगी। और मन अगर बाबा के ज्ञान चिंतन में बिजी है तो क्या होगा, व्यर्थ आएगा ही नहीं, कंप्लेन खत्म हो जाएगी, ये आता ऐसा होता, सब व्यर्थ को समाप्त करने का साधन बाबा की मुरली है। तो मुरली को यथार्थ समझना और मुरली को सांस समझ करके, सांस नहीं चलेगी तो जीवन नहीं है, इसलिए मुरली अंदर सांसों सांस चलती रहे। आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा। और जब फोन करो ना किसी से बात करो हेलो, तो आज बाबा की बात ये बड़ी अच्छी थी, सुना सकते हैं ना। व्यर्थ बातें करने के लिए तो कई बात फोन चल जाते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यहाँ ऐसा होता, यहाँ ऐसा होता, लेकिन अगर बाबा की बात एक अच्छी कोई मिल गई तो मुरली फोन पर सुनाओ एक दूसरे को, जब बात करो आज बाबा की ये बात बड़ी अच्छी लगी। आपस में अगर ज्ञान के लेन देन करेंगे तो बहुत खुशी भी होगी और उस पर ध्यान जाएगा कि बाबा की ये बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। ओके, ओम शांति। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, 5 मिनट देता हूँ फिर योग। मुरली के संबंध में कोई प्रश्न है किसी का? ऐसा है कि निश्चय ही फाउंडेशन है और कई बार कोई अच्छे अनुभव हो जाते हैं तो निश्चय पक्का हो जाता है। जैसे आप यहाँ आए हैं, कई बातों में कुछ संशय हो सकता है लेकिन स्पष्टीकरण होने के बाद जब अनुभव हो जाता है तो अनुभव के बाद निश्चय पक्का हो जाता है। तो इसलिए पहले अटूट निश्चय कायम करने के लिए भी अभ्यास और अनुभव की जरूरत है। अभ्यास को नहीं छोड़ना। मान लो आज आपको ये निश्चय नहीं होता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान हमारा साथी है, निश्चय नहीं हो रहा है, लेकिन आप अभ्यास भी नहीं छोड़ रहे हो, अभ्यास करते हो, मैं आत्मा हूँ, मैं परमपिता की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये अभ्यास करते करते और एक दिन आपको जब अनुभव हो जाएगा तो निश्चय बैठ जाएगा सचमुच वो मेरा बाबा सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए अभ्यास और अनुभव बढ़ाते चलो तो निश्चय बैठ जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, सब मुरली से बहुत प्यार करते हैं ना, मुरलीधर से प्यार, माना मुरली से प्यार। चलो ओके, ओम शांति।
बाबा मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।
मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।
बहुत बहुत राजू भाई जी का शुक्रिया। इतना सुंदर मुरली का इतिहास लगता हमने भी पहली बार सुना, जो द्वापर के लिए एक लोहे के टैंक में डायरियां सब मुरलियों की रखी गई हैं। बहुत सी बातें मुरली के विषय में आज ही पता चली, पहले शायद हम भी इतना नहीं जानते थे। और किस प्रकार मुरली ब्राह्मण जीवन का श्वास है, संजीवनी बूटी है, और कैसे मुरली के द्वारा परिवार में चलने के लिए बाबा क्या क्या धारणाएं बताते हैं, और धर्म की स्थापना के लिए, राजाई के लिए, तो बहुत सुंदर। जिस पर और भी अधिक स्पष्टीकरण शाम को पुनः राजू भाई जी का 5 बजे क्लास है। और आप सब भाई बहने चारों धाम की यात्रा अनुभूति करते हुए 4:45 बजे इसी हॉल में पहुंच जाएंगे, और 5 बजे विशेष मुरली जो हम सबका जीवन है तो इस पर और गहराई से राजू भाई जी बताएंगे। तो हम बहुत बहुत आभार, शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं।